तारीख 17 अक्टूबर दिन गुरुवार। कार्यक्रम नमस्कार भारत के साथ मैं हूं मानसी दाश। सीरिया को लेकर तुर्की और अमेरिका में तनाव बढ़ा। ट्रंप ने कहा,
The thing that's common is that everybody hates ISIS. Now the PKK, which is a part of the Kurds.
सड़क और बिजली को तरसते गढ़चिरौली के आदिवासी इलाके, होगी खास रिपोर्ट।
हमको आंगनवाड़ी भी होना, हमको लाइन भी होना, हमको रोड भी होना, हमको सब कुछ होना।
गैस सिलेंडर हम लोगों को नहीं मिला है सर।
गांधी की 150वीं जयंती पर सुनवाएंगे खास रिपोर्ट, कैसा था गांधी का गुस्सा।
मीराबेन और सरोजनी नायडू तो उन्हें आग का गोला कहती थी।
होंगी खबरें और भी, लेकिन पहले विश्व समाचार।
बीबीसी समाचार गुरप्रीत सैनी से। सीरिया से सेना को वापस बुलाने के अमरीकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के फैसले के खिलाफ अमरीका की प्रतिनिधि सभा में निंदा प्रस्ताव पास किया गया। अमरीकी सेना के उत्तरी सीरिया से निकलने के बाद से ही तुर्की ने कुर्द लड़ाकों पर हमले शुरू कर दिए थे। सीरिया के मसले पर राष्ट्रपति और वरिष्ठ डेमोक्रेट नेताओं के बीच बैठक भी हुई, लेकिन डेमोक्रेट नेताओं का कहना है कि ट्रंप इस दौरान उन पर बरस गए। ब्रसेल्स में ब्रेग्जिट पर बातचीत जारी है। ब्रिटानी सरकार के एक सूत्र ने बीबीसी को बताया कि बुधवार रात तक मसौदा ब्रेग्जिट समझौते पर सहमति नहीं बन सकी। ब्रिटेन और यूरोपीय संघ के अधिकारी अब भी समझौते के बिंदुओं पर बात कर रही हैं। इस बीच गुरुवार को यूरोपीय संघ के नेता एक सम्मेलन करने वाले हैं। इससे पहले यूरोपीय काउंसिल के प्रमुख डोनाल्ड टस्क ने कहा था कि ब्रेग्जिट डील का मूल ढांचा तैयार है। वहीं फ्रांस के राष्ट्रपति के साथ मुलाकात के बाद जर्मन चांसलर एंगेला मर्कल ने कहा कि ब्रेग्जिट पर चल रही बातचीत से जो भी निकल कर आएगा वो जर्मनी और फ्रांस को मंजूर होगा। ब्रसेल से हमें बुरी खबर मिल सकती है, हम नतीजे का इंतजार कर रहे हैं, लेकिन हम हमेशा से चाहते हैं कि ग्रेट ब्रिटेन अच्छे तरीके से यूरोपीय संघ से अलग हो जाए। हम कहते रहे हैं कि हमें इस मुद्दे से फर्क नहीं पड़ेगा, लेकिन यूरोपीय संघ में बाकी बचे 27 सदस्यों के भविष्य के बारे में सोचना ही होगा। जर्मनी और फ्रांस इसके लिए तैयार हैं। ये थे जर्मनी के चांसलर एंगेला मर्कल। आप सुन रहे हैं बीबीसी समाचार। स्पेन के बार्सिलोना शहर में लगातार तीसरी रात हिंसा हुई। यहां कैटालोनिया के अलगाववादी अपने नेताओं को जेल में डाले जाने के खिलाफ विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं। प्रदर्शनकारियों ने बैरिकेड्स में आग लगा दी। कैटालोनिया क्षेत्र के राष्ट्रपति किम टोरा ने हिंसक प्रदर्शनों की निंदा की है। टोरा ने कहा कि ये आंदोलन शांतिपूर्ण रहना चाहिए और हिंसा को किसी भी तरह से जायज नहीं ठहराया जा सकता। वेनेजुएला के राष्ट्रपति निकोलस मादुरो ने कहा है कि देश में हर राज्य को एक सोने की खदान दी जाएगी जिससे वहां की सरकार कमाई कर सकेगी। टीवी और रेडियो पर दिए संबोधन में मादुरो ने कहा कि इस खदान से आने वाले पैसे को शिक्षा, स्वास्थ्य और रोजगार पैदा करने के काम में लगाया जाएगा। मादुरो ने यह घोषणा ऐसे वक्त में की है जब वेनेजुएला आर्थिक संकट के दौर से गुजर रहा है। अमरीका ने वेनेजुएला पर कड़े प्रतिबंध लगाए हुए हैं।
Por eso voy a proceder a aprobar entregar una mina de oro.
मैं सरकारों को सोने की खदान सौंपे जाने की मंजूरी दे रहा हूं। इससे सरकारों को पैसा मिलेगा और वो लोगों की भलाई के लिए अच्छे से काम कर पाएंगी। ये थे वेनेजुएला के राष्ट्रपति निकोलस मादुरो। मोरक्को के राजा ने उस महिला पत्रकार की सजा माफ कर दी है जिन्हें पिछले महीने शादी से पहले शारीरिक संबंध बनाने और कथित रूप से गर्भपात कराने की वजह से 1 साल की सजा सुनाई गई थी। इस पत्रकार के मामले की अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर चर्चा हुई। मानवाधिकार समूहों का दावा है कि महिला को सिर्फ उनके काम की वजह से निशाना बनाया गया जो एक स्वतंत्र अखबार के लिए काम करती हैं। महिला पत्रकार का कहना है कि उन्हें इंटरनल ब्लीडिंग हुई थी जिसके बाद वो इलाज कराने गई थी। कतर के श्रम मंत्री ने नए प्रवासी परमिट सिस्टम को रद्द कर दिया है। मानवाधिकार कार्यकर्ताओं ने इस सिस्टम को आधुनिक गुलामी का तरीका बताया था। इस नए सिस्टम को कफाला सिस्टम नाम दिया गया है। कफाला सिस्टम के तहत प्रवासी मजदूरों को देश छोड़ने से पहले एग्जिट परमिट लेना जरूरी बना दिया गया था। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप का कहना है कि अल सल्वाडोर, होंडुरस और ग्वाटेमाला के लिए कुछ आर्थिक सहायता फिर से बहाल की गई है। बीबीसी समाचार।
बीबीसी हिंदी से दिन की पहली सभा नमस्कार भारत सुन रहे सभी श्रोताओं को मानसी दास का अभिवादन। आधे घंटे का ये कार्यक्रम आप रेडियो के साथ साथ bbchindi.com पर भी लाइव सुन सकते हैं। कार्यक्रम की शुरुआत सीरिया से जुड़ी खबर से। एक तरफ सीरिया को लेकर तुर्की और अमेरिका के बीच तनाव बढ़ रहा है, तो दूसरी तरफ ट्रंप को देश के भीतर आलोचना झेलनी पड़ रही है। सीरिया से अमेरिकी सैनिकों को वापस बुलाने के अपने फैसले के लिए राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप कड़ी आलोचना का सामना कर रहे हैं। उन पर आरोप लगाए जा रहे हैं कि उन्होंने ऐसा करके कुर्दों पर हमला करने के लिए तुर्की को हरी झंडी दे दी है। अमेरिकी प्रतिनिधि सभा में ट्रंप के इस फैसले के खिलाफ निंदा प्रस्ताव पास किया गया है। इससे पहले ट्रंप ने इस फैसले की आलोचना करने वालों को ये कहते हुए जवाब दिया था कि तुर्की सीरिया में घुस गया है, ये अमेरिका की समस्या नहीं है। उन्होंने कहा कि कुर्द भी कोई फरिश्ते नहीं। बीबीसी संवाददाताओं के भेजे ब्यौरे का सार सुनिए गुरप्रीत सैनी से।
अमेरिका की प्रतिनिधि सभा में डोनाल्ड ट्रंप के फैसले के खिलाफ जो निंदा प्रस्ताव पास किया गया, उसमें डेमोक्रेट सांसदों के साथ साथ 129 रिपब्लिकन सांसदों ने भी ट्रंप के खिलाफ वोट किया। वरिष्ठ डेमोक्रेट सांसद चक शूमर ने रिपब्लिकन नेता मिच मैकोनल से अपील की कि वो ऐसा ही प्रस्ताव सीनेट में भी लेकर आएं।
We urge leader McConnell not just to condemn the president but put this resolution on the floor.
हम मैकोनल से अपील करते हैं कि वो सिर्फ निंदा ना करें बल्कि इस प्रस्ताव को सीनेट में लेकर आएं, क्योंकि अमरीकियों और कुर्दों की सुरक्षा सिर्फ एक आदमी के हाथ में है, जो डोनाल्ड ट्रंप है, और उन पर दबाव बनाने का यही तरीका है ताकि जो नुकसान उन्होंने किया उसे ठीक किया जा सके। डेमोक्रेट सांसद चक शूमर के शब्द। इससे पहले राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने अपने फैसले की आलोचना करने वालों को जवाब देते हुए कहा कि कुर्द सेनाओं के खिलाफ तुर्की का हमला अमेरिका की समस्या नहीं है। उन्होंने कहा कि कथित चरमपंथी संगठन इस्लामिक स्टेट के खिलाफ लड़ाई में कुर्दों ने जो समर्थन दिया, उसके बदले में उन्हें अमेरिका ने बहुत पैसा दिया था। ट्रंप ने कहा कि कुर्द कोई फरिश्ते नहीं है। उन्होंने कहा कि कुर्द लड़ाके चरमपंथी समूह इस्लामिक स्टेट से भी ज्यादा खतरनाक हो सकते हैं। ट्रंप ने तुर्की में स्वायत्तता की मांग कर रहे कुर्दी विद्रोही समूह कुर्दिस्तान वर्कर्स पार्टी यानी PKK का नाम लेकर कहा,
Now the PKK, which is a part of the Kurds, as you know, is probably.
हर कोई ISIS से नफरत करता है। अब कुर्दों से जुड़ा PKK चरमपंथ फैला रहा है, और ISIS से ज़्यादा बड़ा चरमपंथी खतरा बन गया है। मुझे लगता है कि ये एक समस्या है, जिसे अब बहुत अच्छे से कंट्रोल में कर लिया गया है। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के शब्द। इस बीच अमेरिका के उपराष्ट्रपति माइक पेंस और विदेश मंत्री माइक पोम्पियो के नेतृत्व में वरिष्ठ अधिकारियों का एक प्रतिनिधिमंडल तुर्की जा रहा है, जो राष्ट्रपति रेचप तैयब अर्दोआन को उत्तरी सीरिया में हमले रोकने के लिए मनाने की कोशिश करेगा। सोमवार को माइक पेंस ने चेतावनी देते हुए कहा था कि तुर्की ने तुरंत संघर्ष विराम लागू नहीं किया तो अमरीका उस पर प्रतिबंध लगाएगा, लेकिन अर्दोआन ने संघर्ष विराम की अमेरिका की मांग को ठुकरा दिया है और कहा है कि जब तक सेफ जोन बनाने का उसका मिशन पूरा नहीं हो जाता, तब तक उत्तरी सीरिया में उसके हमले जारी रहेंगे। इस बीच संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद ने उत्तरी सीरिया में गहराते मानवीय संकट पर चिंता जताई है और कहा है कि मसले का जल्द से जल्द हल निकलना जरूरी है।
रिपोर्ट सुना रही थी गुरप्रीत सैनी। रुख भारत प्रशासित कश्मीर का करते हैं। जम्मू कश्मीर के विशेष दर्जे को खत्म करने वाले संविधान के अनुच्छेद 370 के हटाए जाने के बाद वहां आम लोगों पर हमले बढ़े हैं। इनमें कई गैर कश्मीरी भी हैं। कल पुलवामा में एक गैर कश्मीरी मजदूर की चरमपंथियों ने गोली मारकर हत्या कर दी। वहीं दो और गैर कश्मीरियों पर कल हमला हुआ, जिनमें से एक की मौत हो गई। पिछले चार दिनों में कश्मीर में 3 लोगों की हत्या हो चुकी है। और जानकारी के लिए अब से थोड़ी देर पहले मैंने बात की श्रीनगर में मौजूद हमारे सहयोगी माजिद जहांगीर से।
ये कल की घटना है, दिन की घटना है, और SP पुलवामा से हमारी बात हुई और उन्होंने कहा कि एक जो ईंट का भट्टा होता है उसमें छत्तीसगढ़ का एक मजदूर था, तो उनको SP ने हमें बताया कि मिलिटेंट ने उन्हें गोली मारकर शॉट डेड किया। और ये दूसरी घटना है पिछले 4 दिनों में जब किसी गैर कश्मीरी को मारा गया हो। 2 दिन पहले यानी सोमवार को भी शुपया में एक ट्रक ड्राइवर जो राजस्थान का था, उनकी भी संदिग्ध चरमपंथियों ने गोली मारकर हत्या कर दी थी। जब वो अपना ट्रक लोड कर रहे थे, उसमें जो सेब के डिब्बे वो भर रहे थे।
माजिद साहब, एक और व्यक्ति की मौत की खबर आ रही है जम्मू कश्मीर से।
बिल्कुल, देखिए ये दूसरी घटना है। कल बुधवार को दिन में एक घटना हुई थी और दूसरी घटना ये कल रात की है जो शुपियां में हुई है, जहां एक सेब का जो बिजनेसमैन पर हमला किया गया और उनके साथ एक ड्राइवर को भी निशाना बनाया गया है और उनमें से एक की मौत हो गई है और एक गंभीर रूप से घायल है।
जी, जिन सेब व्यापारी की बात हो रही है क्या वो भी गैर कश्मीरी है?
हाँ, अभी तक यही है कि दोनों गैर कश्मीरी है और दोनों, उनकी पहचान भी हुई है और दोनों गैर कश्मीरी बताए जाते हैं।
कश्मीर में आम लोगों पर हमले बढ़े, जानकारी दे रहे थे माजिद जहांगीर। महाराष्ट्र में जल्द चुनाव होने वाले हैं। यहाँ के आदिवासी बहुल इलाके आज भी बाकी राज्य से कटे हुए हैं। कारण, जंगलों में रहने वाले इन लोगों तक सरकारी योजनाओं का लाभ भी नहीं पहुँच रहा है। गांव में मूलभूत सुविधाओं के लिए ये लोग भी सरकारी दफ्तरों के चक्कर काट काट कर थक चुके हैं। सुनिए महाराष्ट्र के गढ़चिरौली से बीबीसी संवाददाता सलमान रावी की रिपोर्ट।
ये सफर आसान नहीं है। गढ़चिरौली के नरकेला के लिए 12 किलोमीटर लंबी पैदल यात्रा है। यहाँ के ज्यादातर इलाकों में ऐसे ही जाया जाता है।
कौन सा गांव है? इधर आ सकते हो?
आ सकते, लेकिन अभी तो कुछ नहीं लाया, ट्रैवल अंदर कुछ नहीं लाया।
पानी ज्यादा है,
न सड़क है, न बिजली और ना ही दूसरी सुविधाएं। ये महाराष्ट्र के गढ़चिरौली के वो आदिवासी बहुल इलाके हैं जो बाकी के भारत से कटे हुए हैं। यहाँ जिंदगी बहुत मुश्किल है और रास्ते दुर्गम।
देखो हमारा घर कैसा है पूरा, हाँ, हमको आंगनवाड़ी भी होना, हमको लाइन भी होना, हमको रोड भी होना, हमको सब कुछ होना।
कम से कम 50 से 60 बरस हो गया है सर, हमको कास्ट वैलिडिटी नहीं मिल रहा है, इसके वजह से हमको कुछ सुविधा ही नहीं मिल रहे हैं।
अभी इधर के पूरा जंगली इलाका है, वहाँ पे रोड भी जाने का सुविधा नहीं है, कुछ भी नहीं है। वो रोड भी चाहिए और बिजली भी चाहिए, हर घर घर में चाहिए। मेरे लिए
गैस सिलेंडर हम लोगों को नहीं मिला है सर। क्यों? हम लोगों को किसको जो मिला उसको मिला, नहीं तो ऐसा चाहे, सिर्फ हम लकड़ी से ही अभी तक पका रहे हैं सर।
इन इलाकों में सरकारी योजनाएं नहीं पहुंच पा रही हैं। सुदूर अंचलों में रहने वाले बेहाल हैं। आखिर क्यों? मैंने पूछा राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी के नेता धर्मराव बाबा आतराम से।
इस इलाके में तो सभी काफ़ी तादाद में गरीब लोगों को जो जमीन देना था, जो यहाँ पे काश्तकारी कर रहे 20-25 साल से 30 साल से, उनको पट्टे मिल नहीं सके। जो भी है यहाँ पर आदिवासियों को योजना शुरू था खौटी कर्जा, वो बंद हो गया। जो लोगों का शादी करते थे वो योजना बंद हो गया। डॉक्टर है तो दवा नहीं, दवा है तो गाड़ी नहीं, गाड़ी है तो ड्राइवर नहीं, दोनों गाड़ी ड्राइवर और डॉक्टर रहने के बाद भी डीजल नहीं।
लेकिन महाराष्ट्र के सत्तारूढ़ दल को लगता है कि सरकारी योजनाओं का लाभ सबको मिल रहा है, जबकि कई ऐसे इलाके हैं जहां ना अफसर जाते हैं और ना ही नेता। भारतीय जनता पार्टी के मौजूदा विधायक और वरिष्ठ नेता कृष्ण गजबे कहते हैं,
नहीं है वैसा, नहीं है, आप बताओ कहां पे नहीं है करके। चालू है सुविधा, आरोग्य सुविधा अभी चालू है, डॉक्टर है वहां पे, आरोग्य पथक वहां पे पहुंच चुका है। इस साल इतना बारिश हुआ, ये दो महीने के पहले की बात है, इतना बारिश हुआ इससे वजह से थोड़ा सा काम लेट चालू है।
लेकिन सरकारी अफसरों के लिए यहाँ पर तैनाती ही एक सजा है, इसलिए योजनाओं का लाभ लेने को इच्छुक आदिवासी समुदाय के लोग सरकारी दफ्तरों के चक्कर ही लगाते रह जाते हैं। आदिवासी इलाकों के लिए सरकार ने कई योजनाएं बनाई हैं, लेकिन सरकारी अफसरों के लिए यहाँ पर तैनाती ही एक सजा है, इसलिए योजनाओं का लाभ लेने को इच्छुक आदिवासी समुदाय के लोग सरकारी दफ्तरों के चक्कर ही लगाते रह जाते हैं। वरिष्ठ पत्रकार नसीर हाशमी का कहना है कि गढ़चिरौली में तैनात अफसर योजनाओं को लोगों तक पहुंचाने में कोई दिलचस्पी नहीं दिखाते।
ऐसे समझ लीजिए कि गढ़चिरौली के इन दूरदराज इलाकों में किसी अफसर का तबादला होना, ये उसे सज़ा देने के बराबर होता है। तो आप मुझे बताइए, आपको अगर किसी चीज़ की सज़ा दी जाए तो आप वहाँ जाकर उनके बारे में क्या सोचेंगे? तो गढ़चिरौली जब सज़ा काटने आप आए हो तो आप सज़ा काटोगे, वहाँ कौन सी लोगों के साथ में अच्छाइयाँ करने जाओगे? ये बात भी तो अपने आप में एक बड़ी बात है।
अभाव और उदासीनता से जूझते आदिवासियों की विडंबना है कि इन्हें खुद को जिंदा रखने के लिए हर रोज एक नया संघर्ष करना पड़ता है, एक ऐसा संघर्ष जो इनके पूर्वज भी करते आए हैं। सलमान रावी, बीबीसी गढ़चिरौली।
नमस्कार भारत, शॉर्ट वेव 49, 41 और 25 मीटर बैंड यानी 6070, 7290 और 11995 किलोहर्ट्ज और मीडियम वेव 1413 किलोहर्ट्ज पर।
हरियाणा सरकार के अनुसार 2016 में हुए जाट आरक्षण आंदोलन के दौरान हुई हिंसा और तोड़फोड़ के कुछ मामले जांच के लिए केंद्रीय जांच ब्यूरो को सौंपे गए थे और ये सभी मामले कोर्ट में लंबित हैं। राज्य की जिला अदालतों में भी 100 से ज्यादा मुकदमे ऐसे हैं जिनमें नामजद सैकड़ों लोग बीते 3 सालों से अदालतों के चक्कर लगा रहे हैं। इनके अनुसार इन्हें अभी ये भी नहीं पता कि इनका भविष्य क्या होगा, वो कभी दोषमुक्त होंगे या नहीं। सुनिए बीबीसी संवाददाता प्रशांत चाहल की रिपोर्ट।
साल 2016 में हरियाणा के जाट आरक्षण आंदोलन के दौरान राज्य के 8 जिलों में तोड़फोड़, लूटपाट और हिंसा की घटनाएं हुई थी। रोहतक शहर इस तरह की घटनाओं से सबसे ज्यादा प्रभावित था। सरकारी आंकड़ों की माने तो रोहतक जिले में सैकड़ों दुकानें और वाहन जला दिए गए थे और यहां जमकर लूटपाट हुई थी। हरियाणा पुलिस के अनुसार पूरे राज्य में इन घटनाओं के बाद 3000 से ज्यादा केस रजिस्टर किए गए थे, जिनमें से करीब 1000 केस अकेले रोहतक जिले के थे। इन मामलों में रोहतक जिले के 300 से ज्यादा लोगों को गिरफ्तार किया गया था, जिनमें से अब तक सिर्फ एक ही व्यक्ति अदालत में दोषी साबित हो सका है। रोहतक जिले के नौनंद गांव में रहने वाली 65 वर्षीय साहब कौर का बेटा हरिओम तोड़फोड़ के ही एक ऐसे मामले में जेल में बंद है। वो कहती हैं कि जेल में उन्हें उनके बेटे से मिलने भी नहीं दिया जाता।
मिलन भी ना देने मिले, मार पास पास मत आओ, कोई नहीं आता, ना नेता आता, ना वोट मांगने आ जाए, पर समाधान करने कोई नहीं आता।
साहब कौर की तरह कमला देवी के बेटे जसबीर भी तोड़फोड़ के केस में अभियुक्त हैं। जसबीर फिलहाल जमानत पर हैं और रोहतक शहर में ऑटो रिक्शा चलाते हैं, लेकिन कमला देवी को हर वक्त उनकी गिरफ्तारी का डर सताए रहता है।
कसूर हो ना, कितना भी हो, फांसी तोड़ दो मेरे बेटे ने, मैं कति नहीं रो ना दर्दा हो मन, अर्ज किता है नहीं, दुख पा रहा, आत्मा मेरी बहुत दुख है।
इन अभियुक्तों में से एक हैं धर्मेंद्र, जिनकी रेलवे की नौकरी चली गई है। धर्मेंद्र पर देशद्रोह का मुकदमा है। रोहतक के एक डिग्री कॉलेज से वकालत की पढ़ाई कर रहे धर्मेंद्र नहीं जानते कि दोषमुक्त हो पाएंगे या नहीं।
कहाँ से इतना प्रोफेशनल करियर था कि कहाँ पुलिस ने रिमांड लिया तो वो लगातार 7 दिन रिमांड पे रहे, रात को नींद नहीं आई, तो सोच रहे थे ऐसी कौन सी एक्टिविटी कर दी जिसका ये भुगतना पड़ रहा है।
हरियाणा में धर्मेंद्र जैसे सैकड़ों नौजवान 2016 के मुकदमों में अभियुक्त हैं। इनमें से कुछ के लिए पंचकुला की सीबीआई अदालत में केस लड़ रहे वकील प्रदीप मलिक कहते हैं,
कैरियर इनके खत्म हो चुके हैं और अभी ये नहीं पता कि कितने साल चलेंगे। एजिटेशन का नुकसान जो इनको हुआ वो किसी को नहीं हो सकता, ये बिल्कुल तबाह हो चुके हैं।
एक अनुमान के मुताबिक जाट आरक्षण आंदोलन से उत्तर भारत में करीब 30,000 करोड़ का आर्थिक नुकसान हुआ था और हरियाणा में आधिकारिक रूप से 30 लोगों की मौत हुई थी। फिलहाल जाट आरक्षण आंदोलन का कोई चेहरा नहीं है, लेकिन हरियाणा के सैकड़ों युवकों का भविष्य अधर में लटके हैं। हरिओम, जसबीर और धर्मेंद्र दंगों के दोषी हैं या नहीं ये अदालत तय करेगी, पर फैसले का इंतजार इन परिवारों के लिए किसी सजा से कम नहीं। प्रशांत चहल, बीबीसी न्यूज, रोहतक।
कार्यक्रम में आगे बढ़े उससे पहले जानते हैं कि दिल्ली के अखबारों में आज क्या खबरें हैं। गुरप्रीत, कल अयोध्या मामले में आखिरी सुनवाई सुप्रीम कोर्ट में पूरी हुई थी, क्या ये खबर अखबारों में है आज?
जी, लगभग सभी अखबारों में पहले पन्ने पर ये खबर दिख रही है। हिंदुस्तान टाइम्स अखबार के अनुसार अयोध्या पर फैसला आने से पहले उत्तर प्रदेश सरकार ने बुधवार को पूरे राज्य में पुलिस और प्रशासन के अधिकारियों की छुट्टियां जो है वो रद्द कर दी हैं। अखबार ने अधिकारियों के हवाले से लिखा है कि 30 नवंबर तक सभी की छुट्टियां रद्द कर दी गई हैं और अधिकारियों को जी सांप्रदायिक सद्भाव बनाए रखने की
और उम्मीद यह है कि नवंबर से पहले फैसला आ सकता है।
जी बिल्कुल। और टाइम्स ऑफ इंडिया और दैनिक भास्कर में से जुड़ी एक खबर है कि 40वां दिन मध्यस्थता समिति ने आखिरी दिन सेटलमेंट रिपोर्ट दायर की, सुन्नी पक्ष विवादित जमीन छोड़ने को तैयार पर मस्जिद के लिए जमीन मिले, ये कहा है मध्यस्थता समिति ने बताया है ये। इसके अलावा एक और जुड़ी इसी से खबर है कि 5 न्यायाधीशों की बैठक आज होगी, सूत्रों के अनुसार अयोध्या मामले पर फैसला लिखने के बारे में विचार करेंगे। जानकारों के अनुसार फैसला सुरक्षित रखने के बाद जजों की ऐसी बैठक सामान्यतः होती नहीं है। इसके अलावा इंडियन एक्सप्रेस में खबर दिख रही है कि सुप्रीम कोर्ट ने जम्मू कश्मीर प्रशासन से बुधवार को कहा है कि वो उन आदेशों को पेश करे जिनके आधार पर राज्य में संचार व्यवस्था पर पाबंदी लगाई गई थी
जी।
और द हिंदू अखबार में खबर है कि गृह मंत्री अमित शाह ने एक बार फिर राष्ट्रीय नागरिकता रजिस्टर यानी NRC के मुद्दे पर बयान दिया है। हरियाणा के फरीदाबाद में एक रैली को संबोधित करते हुए उन्होंने कहा है कि सभी विदेशियों को देश के भीतर से 2024 तक बाहर कर दिया जाएगा। इसके अलावा निर्मला सीतारमण वित्त मंत्री, उनका बयान कई अखबारों में दिख रहा है कि मनमोहन राजन दौर बैंकों के लिए खराब, ये उन्होंने कहा है। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने कहा है कि पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह और पूर्व RBI गवर्नर रघुराम राजन के वक्त सरकारी बैंकों का सबसे खराब दौर चल रहा था। न्यूयॉर्क के कोलंबिया विश्वविद्यालय में वित्त मंत्री ने यह बात कही है। उन्होंने कहा कि सरकारी बैंकों को जीवन रेखा देना उनकी सबसे बड़ी जिम्मेदारी है
जी।
इसके अलावा मध्य प्रदेश के शिवपुरी के एक सरकारी अस्पताल में एक मृत व्यक्ति के चेहरे और आंखों पर चींटियों वाली एक तस्वीर वायरल होने के बाद प्रदेश के मुख्यमंत्री ने जांच के आदेश दे दिए हैं। टाइम्स ऑफ इंडिया में यह खबर है जिसके अनुसार इस मामले में शिवपुरी जिला अस्पताल के 2 और डॉक्टरों और 3 नर्सों को फिलहाल निलंबित कर दिया गया है
जी। अखबारों की विस्तृत समीक्षा के लिए धन्यवाद गुरप्रीत। और अब वक्त है महात्मा गांधी पर हमारी विशेष पेशकश का। इस महीने की 2 तारीख को महात्मा गांधी की 150वीं जयंती मनाई गई। BBC हिंदी इस मौके पर आपके लिए उनके जीवन से जुड़े कुछ दिलचस्प किस्सों की श्रृंखला लेकर आया है। अब तक आप इस विशेष श्रृंखला की 6 कड़ियां सुन चुके हैं। आज 7वीं कड़ी में वरिष्ठ पत्रकार मधुकर उपाध्याय बता रहे हैं कि क्यों सरोजनी नायडू महात्मा गांधी को आग का गोला कहती थी।
महात्मा गांधी की छवि ऐसी है कि जितने लोग ये समझते हैं कि वो महात्मा गांधी को वाकई समझते हैं, उन्हें लगता है कि उनकी छवि, उनका मन बहुत साफ था, दिल के साफ थे, साफ बात करते थे और बहुत मीठा बोलते थे। कभी गुस्सा उनके चेहरे पर उस तरह आता नहीं था, बल्कि उनके बारे में तमाम तरह के किस्से कहे जाते हैं और ये कहा जाता है कि अगर कोई आपके एक गाल पर थप्पड़ मारे तो दूसरा गाल आगे कर दीजिए, हिंसा मत करिए। लेकिन ये पूरा सच नहीं है। गांधी को बहुत गुस्सा आता था। उनकी नाराज़गी किस सीमा तक जा सकती थी इसकी कल्पना भी कई बार मुश्किल हो जाती है। और अगर आप उनके आसपास रहे लोगों की किताबें पढ़ें, उनके किस्से जानें, तो आपको मालूम होता है कि वो कितना नाराज़ होते थे लोगों पर। कलकत्ता में एक स्कूली बच्चों का एक दल उनसे मिलने आया। वो बहुत नाराज़ थे और वो कह रहे थे कि आपकी अहिंसा ठीक नहीं है, इससे अंग्रेज़ नहीं भागेंगे, इससे कुछ नहीं होने वाला है। तो गांधी जी ने उनसे कहा कि अगर आपको सांप रास्ते में मिल जाए और आप उस पर नाराज़ हों तो वो क्या करेगा? सांप पर आपकी नाराज़गी का असर नहीं होगा, उल्टा हो सकता है वो आपको काट ले, दूसरी तरह से उससे डील करिए। एक जब वो दांडी मार्च कर रहे थे नमक कानून तोड़ने के लिए, तो उस वक्त भटगांव एक जगह है जो रास्ते में पड़ती है साबरमती आश्रम से दांडी के बीच में, और जब भटगांव में ये पहुंचने वाले थे उस वक्त शाम हो गई थी और रोशनी कम हो गई थी। भटगांव के लोगों को लगा कि महात्मा गांधी आ रहे हैं तो उनके लिए रास्ते में ठोकर न लगे, पैर में कोई कुछ ऐसा ना हो जाए, तो इसलिए उन्होंने शहर से पेट्रोमैक्स मंगवाए जिनको हंडा कहते थे, और हंडा लेकर सिर पर 2 आदमी दौड़ते हुए चलते थे क्योंकि गांधी की रफ्तार बहुत तेज़ थी, तो वो दौड़ते हुए लगभग चलते थे और पीछे से लोग उनको बोलते रहते थे कि और तेज़ भागो और तेज़ भागो। गांधी ने ये सब देखा सुना और तुरंत कुछ नहीं कहा, लेकिन जब वो मंच पर पहुँचे तो उन्होंने कहा कि आप ये बताइए कि मेरी शक्ल देखने लायक है भी क्या? बंदर जैसी सूरत है, उन्होंने अपने बारे में कहा, दांत टूटे हुए हैं, सिर पर बाल नहीं है, आप हमें देखना क्यों चाहते हैं? सुन तो आप हमें अंधेरे में भी सकते हैं। और उसके बाद उन्होंने फिजूल खर्ची पर और तमाम तरह की चीज़ों पर और विदेशी सामानों के इस्तेमाल पर एक लंबी चौड़ी तकरीर की कि हड़बड़ा कर लोगों ने पेट्रोमैक्स बंद कर दिया, माफ़ी मांगी और महात्मा गांधी का गुस्सा किसी तरह शांत हुआ। उमराछी एक और जगह थी जहाँ प्यारेलाल सचिव थे महात्मा गांधी के, और उनको लगा कि गांधी जी जिस मिट्टी के प्याले में पानी पीते हैं वो टूट गया है, ऊपर से हल्का सा टूटा हुआ था, तो उन्होंने सोचा कि इसे बदल देते हैं। वो बाज़ार में ख़रीदने गए तो वो 6 पैसे का एक मिट्टी का प्याला था, और अगर वो 7 पैसे या 8 पैसे देते तो उनको 2 प्याले मिल जाते। तो प्यारेलाल ने यह सोच कर कि हो सकता है अगला प्याला भी टूटे, उन्होंने दो प्याले खरीद लिए। गांधी जी ने पानी पीते समय वो प्याला देखा और पूछा कि वो पुराना वाला कहाँ गया। उन्होंने बताया कि बापू वो टूट गया था, हमने बदल दिया। और अपनी तारीफ करते हुए लगभग प्यारेलाल ने कहा कि 6 पैसे में 1 दे रहा था, मैंने तो 8 में 2 ले लिए। गांधी जी ने खाना छोड़कर प्यारेलाल को इतनी डांट सुनाई और फिर संग्रह की प्रवृत्ति की चीज़ जिसकी ज़रूरत नहीं है उसको आप अपने पास इकट्ठा क्यों करते हैं, जब वो टूटेगा तब उसकी ज़रूरत पड़ सकती है, उस वक्त देखा जाएगा, आप उसके लिए पहले से इंतज़ाम करके क्यों बैठे हुए हैं। आप जानते हैं कि आप कितने दिन जिएंगे, आपको मालूम है कि अगला प्याला कब टूटेगा, और एक वज़न आपने मेरे ऊपर और लाद दिया कि अब मैं 1 की जगह 2 प्याले लेकर जाऊँ। लेकिन इस सब से जो एक और किस्सा है गांधी के गुस्से का, वो बकिंगम पैलेस से जुड़ा हुआ है। 1930 में जब ये राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस के लिए लंदन गए थे, न्योता आया और ये वहाँ जाने के लिए तैयार हुए, कार आई थी इन्हें लेने। बकिंगम पैलेस का प्रोटोकॉल ऐसा है कि वहाँ 3 जगह कार रुकने की व्यवस्था है। पहले जो गेट है वहाँ तक उनकी कारें जा सकती हैं जो कहीं के राजा हों। दूसरा दरवाज़ा उन लोगों के लिए है जो हेड ऑफ स्टेट नहीं है लेकिन हेड ऑफ गवर्नमेंट है, प्रधानमंत्री हैं या दीगर कोई ओहदा उनके पास है। और तीसरा दरवाज़ा उन लोगों के लिए जो महत्वपूर्ण लोग हैं लेकिन उनके पास कोई पद नहीं। प्रोटोकॉल के हिसाब से गांधी की कार 3रे दरवाजे पर रुकनी थी। कार की रफ्तार जैसे धीमी होनी शुरू हुई उन्होंने ड्राइवर से सिर्फ 2 शब्द कहे और बहुत सख्ती से उन्होंने कहा ड्राइव ऑन, और ड्राइवर की हिम्मत नहीं हुई कि वो 3रे दरवाजे पर कार रोके, वो सीधा पहले गेट तक चला गया। ये इस तरह के किस्से मीराबेन ने अपनी किताब में उनका जिक्र किया है, बल्कि मीराबेन और सरोजनी नायडू तो उन्हें आग का गोला कहती थी, फायर बॉल, कि वो कब फट पड़ेंगे किसी को पता नहीं।
ये थी महात्मा गांधी से जुड़े दिलचस्प किस्सों की इस श्रृंखला की 7वीं कड़ी। और अब चलते चलते एक नज़र खेल समाचारों पर।
खेल समाचारों के साथ मैं हूँ ज्योतिका सिंह, और आज सबसे पहले बात क्रिकेट की करते हैं। भारतीय महिला क्रिकेट टीम की स्टार खिलाड़ी स्मृति मंधाना ने बल्लेबाजों की वनडे ICC रैंकिंग में से अपनी टॉप पोजिशन गंवा दी है। मंधाना हाल ही में दक्षिण अफ्रीका के साथ खेली गई वनडे सीरीज में भारतीय टीम का हिस्सा नहीं थी। रैंकिंग में मंधाना की जगह न्यूजीलैंड की एमी स्टर्थवेट आ गई है। वहीं महिला टीम इंडिया की वनडे कप्तान मिताली राज नीचे आकर 7वें स्थान पर आ गई हैं। दक्षिण अफ्रीका के खिलाफ 3 मैचों की वनडे सीरीज से पहले मंधाना को अभ्यास स्तर में चोट लग गई थी और वो अपने दाएं पैर के अंगूठे को फ्रैक्चर करा बैठी थी। मिताली इसी सीरीज में अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट में 20 साल पूरे करने वाली पहली महिला खिलाड़ी बनी हैं। और अब बात फुटबॉल की करते हैं। हाल ही में स्टार स्ट्राइकर रोनाल्डो ने अपने करियर का 700वां गोल किया। इस उपलब्धि के बाद भी रोनाल्डो अपनी राष्ट्रीय टीम पुर्तगाल को यूरो 2020 क्वालिफायर में यूक्रेन के खिलाफ जीत नहीं दिला सके। उनका ये 700वां गोल 973 मैचों में आया है। खेल समाचारों में आज इतना ही।
कार्यक्रम में आपसे विदा लें उससे पहले मुख्य समाचार एक बार फिर गुरप्रीत सैनी से।
BBC समाचार। सीरिया से सेना को वापस बुलाने के अमरीकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के फैसले के खिलाफ अमरीका की प्रतिनिधि सभा में निंदा प्रस्ताव पास किया गया। ब्रसल्स में ब्रेक्जिट पर बातचीत जारी है। ब्रिटानी सरकार के एक सूत्र ने BBC को बताया कि बुधवार रात तक मसौदा ब्रेक्जिट समझौते पर सहमति नहीं बन सकी। स्पेन के बार्सिलोना शहर में लगातार 3री रात हिंसा हुई। यहां कैटलोनिया के अलगाववादी अपने नेताओं को जेल में डाले जाने के खिलाफ विरोध प्रदर्शन कर रहे थे। वेनेजुएला के राष्ट्रपति निकोलस मादुरो ने कहा है कि देश में हर राज्य को एक सोने की खदान दी जाएगी जिससे वहां की सरकार कमाई कर सकेगी और इस खदान से आने वाले पैसे को शिक्षा, स्वास्थ्य और रोजगार पैदा करने के काम में लगाया जाएगा। BBC समाचार।
नमस्कार भारत में आज इतना ही। कार्यक्रम का तकनीकी पक्ष संभाला अजीत सारथी ने। अगला प्रसारण दिन भर आज शाम 7:30 बजे। तब तक देश दुनिया की खबरों के लिए बने रहिए BBCHindi.com के साथ। फिलहाल मानसी दास समेत पूरी टीम को दीजिए अनुमति। नमस्कार।